हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन कक्षा में। तो आज हम जैसे आप में से जो लोग पहले से ही भागवतम कक्षा में नियमित रूप से आते हैं, पता होगा कि बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है यहाँ पर। श्रीमद् श्री प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र पे चर्चा हो रही है और ये जो अध्याय है जिसपे अभी चर्चा चल रही है, हिरण्यकश्यप का साधु पुत्र प्रहलाद, तो इस अध्याय के 27वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक सामने बोर्ड पर लिखा है, आप हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। संति असाधो लोके
संति
असाधो लोके
संति
ब्राह्मणों के हत्यारे बाद में क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, शराबी लोगों के दांत झड़ जाते हैं, स्वर चुराने वालों को नाखून के रोग हो जाते हैं, और ऐसे कामी पुरुष जो उच्च कुल की स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें कोल तथा इस प्रकार के चर्म रोग होते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है इस श्लोक में जो बताया गया है उसमें बताया गया है इस श्लोक में कि किस प्रकार से यहाँ पर रोगों के बारे में चर्चा की गई है, पर हम उसमें चर्चा नहीं करना चाहेंगे, ऐसा ना हो चर्चा करने के बाद आप लोगों को लगे कि या तो हमें दवाई छोड़नी चाहिए या फिर हमने बहुत पाप कर्म किए हैं। तो इसमें जो प्रभुपाद जी इसके जो अनुवाद में प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी प्रकार से इस संसार में छद्म धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं अंततो गत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविकता शत्रुता में प्रकट हो जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत स्पष्ट बता रहे हैं अपने अनुवाद में कि किस प्रकार से जैसे भौतिक संसार में रहते हुए हमारा जनरल एक्सपीरियंस होगा कि हम जब लोगों से डील करते हैं तो जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं, संबंधी मानते हैं, पर दरअसल वो जो हमारे मित्र संबंधी होते हैं वो कोई निष्काम भाव से हमारी सेवा नहीं कर रहे होते। हर किसी का सेल्फिश मोटिव होता है, हर कोई सेल्फ सेंटर्ड होके हमारे साथ somehow अपना काम निकलवा रहा होता है ना। हालांकि अगर जितनी पिक्चर्स आएंगे या कुछ भी आता है तो सब में भरा होता है कि किस प्रकार से दोस्तों के बीच में क्या संबंध होते हैं, दोस्त वादे करते हैं आपस में ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, पर जैसे ही कोई मुसीबत पड़ती है तो वो जो दोस्त होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सब बोलते हैं मैं तेरे पीछे हूँ, डर मत, पीछे ही रहते, आगे कभी नहीं आते, क्योंकि जो भौतिक संसार की जो मित्रता है दरअसल ये मित्रता नहीं है, क्योंकि मित्र वही हो सकता है जो हमारा सुहृद हो और जो हमारा भला चाहता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा भला नहीं सोच सकता, हमारे भले के बारे में नहीं बता सकता जिससे अपने ही भले के बारे में ना पता हो। अधिकांश हम लोग देखते हैं जितने भौतिक संसार के लोग हैं उन्हें अपने भले के बारे में नहीं पता होता, उनकी जो मित्रता है वो केवल कपट है, झूठ है, छंद है। तो नेचुरली जो भी हमारे निकट होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, उनके पास एक नेचुरल शक्ति होती है कि वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति से जो हमारे से दूर है। अगर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं जो हमारा दुश्मन है तो उस दुश्मन को जानने के बाद हम हमेशा सतर्क रहेंगे कि हमारा दुश्मन है और इससे हमें बच के रहना है। पर जो व्यक्ति हमारा दोस्त बन के दिखा रहा है पर दरअसल में असलियत में हमारा दुश्मन है, तो वह व्यक्ति उतना ही खतरनाक है। मान लीजिए अगर किसी युद्ध में जो अपोजिट पार्टी के सामने अगर हजारों हजारों लोग क्यों नहीं खड़े, वो इतने खतरनाक और इतने घातक नहीं साबित हो सकते जितना वो एक व्यक्ति जो जासूस उसकी अपनी सेना में होगा। कि वो जो एक स्पाई है अंदर सेना के अंदर, जो एक जासूस है, वो सेना के अंदर के जो भी प्लान्स हैं, जो भी प्लानिंग है वो अंदर की सब खोलकर बता देगा दुश्मन को। तो उसी प्रकार से जैसे जो भी हमारे निकटी, चाहे वो हमारे मित्र हो चाहे वो हमारे संबंधी हो, उनके पास एक नेचुरली शक्ति रहती है कि हमें ज्यादा कष्ट पहुंचा सकते हैं किसी कर्मी व्यक्ति से, किसी हमारे दुश्मन से। जैसे ध्रुव महाराज के हम चरित्र में देखते हैं कि ध्रुव महाराज को किस प्रकार से बोला गया, ध्रुव महाराज को कि ध्रुव महाराज को कहा गया, दरअसल उनकी सौदेवी माता ने बोला कि आप अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो जब ये बोला गया ध्रुव महाराज को, जब ये शब्द बोले गए तो ध्रुव महाराज ने सुना इसे और ध्रुव महाराज को क्रोध आया। अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने यह शब्द बोले हुए ध्रुव महाराज को तो शायद उन्होंने इतना सीरियसली नहीं किया होता उसको। ध्रुव महाराज इतना सीरियसली इसलिए किया इस बात को क्योंकि जो शब्द थे उनकी माता के द्वारा कहे गए थे। तो हमारे जो भी निकटी हैं, जो भी हमारे सबसे क्लोज थे हैं, जो पास में, इनके पास एक नेचुरल शक्ति रहती है कि हमें हमारे दुश्मन से ज्यादा दुख पहुंचा सकते हैं। तो जो भी हमारे मित्र हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स लाइफ में देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं वो दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि तेरी पढ़ाई कितनी हो गई, अगर उस स्टूडेंट की ज्यादा पढ़ाई हो गई तो उसको
उत्साह नहीं बढ़ाते उसका, उसके उत्साह को डाउन करते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्यों पढ़ रहा है, तो बहुत समय पढ़ा है, आराम से पढ़ी हो, बहुत समय है। बिजनेस में देखते हैं हम लोग कितने हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो कोलीग्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह पर तो आपको दिखाएंगे कि आपके सबसे अच्छे मित्र वही है, पर पीछे से क्या करेंगे, सारी धोखाधड़ी की प्रवृत्ति रखेंगे, पूरी बैक बाइटिंग होगी, आपके प्रति पॉलिटिक्स होगी, किस तरीके से आपको ट्रैक किया जाए, खींचा जाए पीछे। क्योंकि हमारे जो भी मित्र हैं, जो इस भौतिक संसार के हैं, वो खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते, परंतु ये भी नहीं देख सकते कि हम आगे बढ़े। तो हमें ये समझना होगा, जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से समय के अनुसार कृष्ण ऐसे ऐसे मित्रों की पोल खोल देते हैं। दरअसल हमारे मित्र नहीं है, मित्र के वेश में दुश्मन है। तो जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि अगर हम जानते हैं कि कोई हमारा दुश्मन है तो हम सतर्क रहेंगे कि हमारा दुश्मन है, इससे बच के रहना है। परंतु अगर कोई व्यक्ति जिसे हम जानते ही नहीं हमारा दुश्मन है, हमारा मित्र बन के बैठा है, अगर ऐसा व्यक्ति के ऊपर हम पूरा अपना ट्रस्ट करते हैं, तो आप सोचिए हमारी लाइफ का क्या होगा। तो हमारी लाइफ में भी हम लोग बाहर मटेरियल वर्ल्ड में जब हम लोगों से डीलिंग करते हैं, तो लोगों से डीलिंग करते हैं तो हमको जज कर पाते हैं कि मेरा फ्रेंड है, ये मेरा एनमी है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, दुश्मन है। परंतु जब हमारे अंदर की बात आती है तब हम नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसे श्रीमद भगवद गीता में भगवद गीता के छठे अध्याय छठवां श्लोक है, बंधु आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत दिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो दरअसल हम इस शरीर में रहने के बाद हमारे जो सारी डिक्टेशन हमें मिलती हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, ये सारी डिपेंड करती है हमारे माइंड के थ्रू। और ये माइंड हमारा ऐसा शत्रु है जिसे हमने अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड माना हुआ है, सबसे निकट। ये अगर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं किसी पे, जिसे हम सबसे बड़ा अपना दोस्त मानते हैं, वेल विशर मानते हैं, तो वो हमारा मन है। क्योंकि देखिए असली मित्र के साथ क्या डीलिंग होती है, मित्र जो भी बोलता है उस पर 100% ट्रस्ट करके, विश्वास करके उसे पालन किया जाता है। तो यही रवैया हमारा रहता है हमारे मन के साथ। हमारा मन हमें जो भी डिक्टेशन देता है हम उसे एज इट इज फॉलो करते रहते हैं। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब है कि हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ को कंट्रोल करना, क्योंकि मन से इंद्रियां जो है वो लोअर है और मन से जो बुद्धि है इंटेलिजेंस ही हायर है। अगर हम इंद्रियों के कहने पे मन को वर्क करवाते रहेंगे, क्योंकि इंद्रियों की क्या डिमांड है, उस डिमांड पर अगर हमारा मन कार्य करेगा तो इंद्रियां क्योंकि लोअर है, मन से नीचे है, वो मन को खींच कर ले जाएंगे। और अगर हम हायर सेल्फ, अगर हम, क्योंकि जब हमारा दुश्मन बना रहेगा जब तक सेंसेस को फॉलो करेगा मन, पर अगर मन तैयार हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे हायर सेल्फ, हायर इंटेलिजेंस को फॉलो करना है, तो यही हमारा मन, जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तो हायर इंटेलिजेंस, यहां पर हायर इंटेलिजेंस यही है कि हम लोग जो गुरु बता रहे हैं, जो कृष्ण बता रहे हैं उसे समझें, जो सेल्फ डिक्टेशंस हैं, जो अंदर से हमारे इंक्लिनेशन आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, जो वेग आ रहा है, जो हमारे को हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि स्थिर नहीं रहता, किसी चीज को एक्सेप्ट करके उस पर इतना विश्वास कर लेता है मन कि अगर ये नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही हमको मिलने लगती है चीज, मन कहता है अरे इसमें इतना टेस्ट नहीं है, वो कर दूसरा करेगा तो उसमें थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। तो किस प्रकार से मन अपने डिक्टेशंस को बदलता रहता है और हमें हमेशा कंफ्यूजिंग स्थिति में रहता है। तो हायर इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंटेलिजेंस से वर्क करें, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, एक सुई के समान है, और जो हमारा मन है एक स्टील की ग्लास की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उस सुई से, उस इंटेलिजेंस से अगर हम उस ग्लास को छेदने की कोशिश करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें हायर इंटेलिजेंस चाहिए जिसको लेके हम डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, और वो हायर इंटेलिजेंस है व्यवसात्मक बुद्धि, एक है गुरु नंदना, हायर इंटेलिजेंस जो गुरु के द्वारा आ रही है। केवल उसी मार्ग को फॉलो करते हैं। जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स गुरु या सीनियर वैष्णव जब मंदिर में आते हैं या प्रवचन देते हैं तो जो वो बताते हैं हमें फॉलो करना। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने प्रवचनों में अधिकांश बताते हैं कि कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो पर भक्ति को हाथ से फिसलने मत दो। या फिर महाराज बताते हैं कि अगर हम जप कर रहे हैं तो जप करना केवल जप करना इनफ नहीं है, अटेंटिव जप करना दरअसल असली जप है। तो ये जो हायर इंटेलिजेंस है दरअसल ये हमारी मदद कर सकती है, हमारी मदद करती है कि हम अपने लोअर सेल्फ इस मन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि माया दरअसल हमारी दुश्मन है और माया का एक स्पाई, माया का एक जासूस मन वो हमारे शरीर के अंदर है और हमारे अंदर जो भी चल रहा है ये कॉम्युनिकेशन हमारे दुश्मन के पास पहुंच जाता है। तो जैसे दुश्मन के पास पहुंचता है कॉम्युनिकेशन तो दुश्मन और अलर्ट हो जाता है और नई स्कीम्स बनाता है हमको फंसाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि माया ये दुश्मन भेजती है, असुर भेजती है, जैसे कंस असुर भेजता था वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए, तो माया भी उसी प्रकार से असुर भेजती है बार बार कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण के भक्तों को तंग करने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए भक्ति को। पर हमें क्या करना है, हायर इंटेलिजेंस से वर्क करना है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है व्योमासुर राक्षस की। ये व्योमासुर राक्षस दरअसल जो कृष्ण थे नेचुरली बार बार और बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चों को नेचुरली पसंद होता है खेलना। तो जो ग्वाल बाल और कृष्ण बहुत सारी गेम्स खेलते थे ना, कभी बहुत से और कभी कंपटीशन होता था कि कौन पहले कृष्ण को छुएगा, अहम पूर्वम कह के भागते थे। तो इसी प्रकार से एक बार उन्होंने गेम खेला और पूरी गेम को उन्होंने पूरे ग्वाल बाल को तीन डिविजन्स में बांट दिया। तो सबसे पहले हमें इसके साथ ये समझना पड़ेगा कि ये जो गेम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स के साथ मित्रों के साथ खेली जाती हैं, दरअसल भौतिक जीवन में हम भी कभी ना कभी खेले होंगे या खेलने का शौक रहा होगा अगर कोई शुरू से कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है। तो जो बच्चे हैं वो किस लिए खेलते हैं, पर्पस क्या रहता है खेलने का, कि खेल के हमें कुछ इंजॉयमेंट मिले, कुछ मजा आए, कुछ रिलिश कर पाए हम लोग। पर जैसे ही वो खेलने लगते हैं बच्चे, वो खेल के उनको क्या फीलिंग आती है कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं हारूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। तो इसलिए वो जो गेम है, जो कंपटीशन हुआ था, जो खेलने गए थे बच्चे, इसलिए खेलने गए थे कि मैं एंजॉय करूंगा, खुश होऊंगा। पर वो कंपटीशन किस में बदल जाता है, एनिमिटी में बदल जाता है, कंपटीशन में बदल जाता है, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन है वो ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन बहुत एनकरेजिंग है क्योंकि कभी कभी कृष्ण जीतते हैं और कभी कभी ग्वाल बाल जीतते हैं। ग्वाल दोनों ही केसेस में अगर ग्वाल बाल जीतते हैं तभी ग्वाल बालों को यही होता है कि किस प्रकार से कृष्ण को इससे आनंद मिलेगा, और अगर कृष्ण जीतते हैं तभी ग्वाल बालों का यही होता है कि किस प्रकार ग्वाल बालों को इससे आनंद मिलेगा। तो ये जो रेसिप्रोकेशन है कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच में, भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो यही संबंध हमारा भक्ति का, यही वैष्णव का कृष्ण भावना आंदोलन में भी होना चाहिए। क्योंकि मेटीरियल कॉन्शियसनेस ये बताती है कि दूसरों के सुख को देखकर हम बहुत दुखी हों। जैसे ही हम देख रहे हैं कोई एडवांस कर रहा है अपने सर्विसेज में है ना, तो हमारे अंदर क्या है, एक एनवियस मोटिव आ जाता है, एक कॉम्पिटिटिव मोटिव आ जाता है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं देखकर कि किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। और कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं ये सोचकर कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या कारण है उसका। पर आध्यात्मिक चेतना ये चेतना है कि किस प्रकार से चाहे सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, पर उसका मोटिव क्या होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न हो। और ये अगर ये मोटिव रहता है कृष्ण प्रसन्न हो तो नेचुरली वो सेवा करके हम भी प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के कार्य किए जाएंगे तो नेचुरली हमें भी उससे प्रसन्नता मिलेगी। और अगर कृष्ण को मान लीजिए हमें प्रसन्न नहीं किया और बाकी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज थी वो सारी बिल्कुल परफेक्ट रही, हर चीज में जीत थी हमारी, पर अल्टीमेटली क्या होगा, वो सिर्फ फेलियर होगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा, काम तो हमारा हो गया किसी प्रकार से, पर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। और अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो नेचुरली हम भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेवा करके कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका डिग्री यही है कि सेवा करके हम प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सेवा करके हम दुखी हैं, इसका मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया गया। क्योंकि अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जाए कार्य, तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ती है। और अगर वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन चल रहा है सिर्फ। पहले जो कॉम्पिटिशन हम बाहर समाज में करते थे, वो सिर्फ स्थान बदल गया है, अब वो अंदर होने लगा है कॉम्पिटिशन। तो फ्रेंड, मित्र, असली मित्र, असली फ्रेंड की डेफिनेशन हम उसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो बुरी सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करे, प्रॉब्लम्स में हमारी सहायता करे। कृष्ण भावना भावे में भी कई बार भक्तों के जीवन में ऊंच नीच ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर उस समय हम भक्तों को प्रताड़ित करें ये बोलकर इसका पतन हो गया है या इसकी भक्ति ठीक नहीं चल रही, तो क्या होगा, वो जो भक्त हो सकता है भक्ति में किसी तरीके से आगे निकल जाए, उसका बचा बचा एंगेजमेंट भी खत्म हो जाएगा। पर रियल फ्रेंड वो होता है अगर वो देखता है कि कोई भक्त भक्ति में नीचे जा रहा है, तो उस समय वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना शुरू करता है, अपनी डिजायर्स को, अपने मोटिव्स को सेक्रीफाइस करके कोशिश करता है कि किस प्रकार से मैं अपने मित्र को ऊपर उठाऊं। और दूसरा तरीका, कभी कभी कृष्ण भावना मन में भक्तों को ऊपर उठाते हैं, उठाया जाता है, परंतु एक सर्टेन लेवल तक। साधना स्वामी महाराज को सुन रहा था, तो महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि हम लोग भक्तों को उठाते हैं भक्ति में ऊपर, पर उठाने के साथ साथ इतना नीचे रखते हैं कि मेरे से नीचे रहे हमेशा, मेरे से ऊपर ना बढ़ने। क्योंकि अगर मेरे से ऊपर बढ़ेगा तो मेरे पे ओवर पावर करने लगेगा, तो मेरे से नीचे रहे ताकि हमेशा मैं इस पे पावर कर सकूं। पर कृष्ण का जो मोटिव है, कृष्ण की जो फ्रेंडशिप है, कृष्ण का जो नेचर है, इससे बिल्कुल विपरीत है। कृष्ण जब अपने मित्रों की मदद करते हैं, फ्रेंड्स को अगर हेल्प करते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब कृष्ण बच्चों के साथ रेसलिंग मैच खेलते थे भक्तों के साथ, तो उस मैच में वो हारने के लिए तैयार होते थे, है ना। ग्वाल वालों को तो अपने कंधे पर बिठाकर घूमना पड़ता था, पनिशमेंट सहनी पड़ती थी, अपने से श्रेष्ठ बनाया, अपने भक्तों के पादुकाओं को अपने सिर पे उठाकर लेके जाते थे, अपने से श्रेष्ठ बनाया। तो ये असली मित्र है। और इसी तरीके से हम अपने फ्रेंड्स को जज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण की जो पास्ट लाइफ थी, इसमें तो उन्होंने पूरी पास्ट लाइफ को, पूरे ग्वाल बालों को तीन डिविजन में बांट दिया। और जो व्योमासुर नाम का राक्षस था, वो भी राक्षस इस पार्टी में आगे मिल गया और एक ग्वाल बाल के भेष में आकर। अब देखिए, अगर ग्वाल बालों को पता होता कि ये जो मेरा मित्र है, जो मेरे मित्र के रूप में आए हमारे साथ खेलने के लिए, दरअसल एक असुर है, तो क्या खेलने देते उसको अपने साथ? कभी भी नहीं खेलने देते। तो किसने खेलने दिया? क्योंकि वो सेम उसी मूड में आया, ग्वाल बाल बन के आया, एक फ्रेंड बनकर आया। तो जो भी पूरी पास्ट टाइम की जितने भी कावर्ड बॉयज थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, उनको तीन डिविजन में बांट लिया गया। कुछ ग्वाल बाल भेड़ बने, कुछ चोर बने, और कृष्ण बने पुलिस कांस्टेबल। तो नेचुरली सबकी ड्यूटी यही थी कि जो चोर होंगे वो ग्वाल भेड़ों को चुराएंगे, और जो पुलिस वाले होंगे वो चोरों को पकड़ेंगे जो भेड़ों को चुरा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो इसी प्रकार से जब शुरू हुई इनकी गेम, तो थोड़े समय बाद, क्योंकि व्योमासुर जो था राक्षस, वो सभी ग्वाल बालों को चुराया जाता था उनकी स्थिति से, और चुरा कर एक गुफा में जाकर छुपा लेता था, फिर जाता था दोबारा बच्चों भेड़ों को चुराता था और दोबारा छुपा लेता था। ऐसा नहीं करता था कि उनको पकड़ने के बाद उनको बोले कि ठीक है अब आप बैठ के देखिए, अब बाकी की गेम हम लोग खेलेंगे, उनको छुपा लेता था। तो कृष्ण समझ गए कि ग्वाल बाल कम हो रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है। तो कृष्ण योगी सभी के हृदय में है और परमात्मा रूप में, तो कृष्ण समझ गए। और नेचुरली कृष्ण हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, और हम ओरिजिनली हम लोग भगवान के धाम से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, और हमने यहाँ पर आके सबसे बड़ा ट्रस्ट किया है अपने मन पर, तो उस ट्रस्ट के कारण ही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम यहाँ पर सह रहे हैं, और जो भी हमारी ब्लॉकेज है उस ट्रस्ट के कारण ही है। तो कृष्ण ने जब देखा कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो इतनी हेल्पलेस कंडीशन में, होपलेस कंडीशन में है, तो कृष्ण ने क्या किया, उस असुर को पकड़ लिया। अब हम समझ पाएंगे, अब जब कृष्ण उस असुर को पकड़ा तो हमारा मन कैसे डील करता है, क्योंकि नेचुरली जब कृष्ण ने उस असुर को पकड़ा तो असुर इतनी आसानी से पकड़े जाने वाला नहीं था। जैसे ही कृष्ण पकड़ा, अब असुर ने सोचा कि मैं भागूं यहां से, किसी तरीके से निकलूं। जब निकल नहीं पाया क्योंकि कृष्ण बहुत सख्ती से पकड़ के रखा था, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, एक पहाड़ के समान उसने अपना रूप बना लिया। तो हमारा मन जो उसी प्रकार से, जो हमारे अंदर का जो असुर है, इसकी जो चालें हैं सेम उस असुर की तरह है, व्योमासुर की तरह। पहली बात तो ये किसी की पकड़ में आता नहीं है, है ना, और अगर पकड़ में आ जाए तो ये सरेंडर करने के लिए फिर भी मना कर देता है। आप जनरल एक्सपीरियंस है, अगर आप बाहर किसी व्यक्ति से पूछें तो जिनका, जिन्होंने अपने माइंड को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया अभी तक, उनका माइंड उनको कोई प्रॉब्लम दे रहा है कि डिटेक्ट ही नहीं कर पाया अभी तक, तो वो सिंपली बस उस मटेरियल लाइफ में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ यही है, हम यहीं पर ही खुश हैं, वो डार्कनेस उस केव में उनका अच्छा लगता है। पर अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका मन उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं करता, अगर आप भक्तों का एक्सपीरियंस लेंगे तो उनका मन उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब करता है। एटलीस्ट जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है एक लेवल तक स्थिर हो जाता है कि मुझे यही करना है, पर भक्त कंफ्यूजन में रहता है, उधर जाऊं इधर जाऊं, है ना, शायद वो अच्छा है, जब अंदर आ जाता है बोला तो शायद लगता है वो बाहर की घास अच्छी है, जब बाहर की घास ना लगता तो कहता है अंदर की घास अच्छी है, तो हमेशा डिस्टर्ब और परेशान रहता है, हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि अब क्या है, कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद जो माइंड है अब वो डिटेक्टेड है, अब वो पकड़ा गया है, और नेचुरली माइंड की चाल है, माया की चाल है, मन जब पकड़ा गया है अब वो भागने की कोशिश करता है, हर प्रकार की चीजें अपनाता है किसी तरीके से वो एस्केप हो, निकले यहां से। पर क्योंकि निकल नहीं पा रहा तो अब क्या करता है, अपना बड़ा रूप बनाने की कोशिश करता है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ज्यादा डिफिकल्टीज, हर प्रकार का टॉर्चर, माइंड हर प्रकार से आपको घुमाने की तैयार हो जाएगा, हर प्रकार से कोशिश करेगा किसी प्रकार से भक्तों का संग छोड़कर दूर हो, किसी प्रकार से हल्का सा दूर हो और मैं उसे पकड़ लू, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, और भी काफी भक्तों से पूछा इसमें, किसे जब भक्त जप करते हैं सुबह, तो जब भक्त सुबह जप करते हैं तो मन एक थॉट लाता है बीच में, बड़ा एक विचित्र सा थॉट होता है कि भक्तों के बीच में बैठ के जप कर रहा है, सुनाई तो दे ही रहा है ना, कभी कभी लगता है कि ये तो बोल रहा है मैं खाली मन के नीचे कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि सुनाई तो दे ही रहा अपनी अपनी भाषा, तो मन सोचता है थोड़ा दूर बैठ के जप करता हूँ, अपना हरे कृष्ण नाम सुन लेता हूँ, थोड़ा सा दूर बैठ के जप करना शुरू करता है वो भक्त, धीरे करते 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 उसको लगता है जब इतना दूर बैठ के अच्छा सुनाई दे रहा है, थोड़ा और दूर बैठ के बैठूंगा तो क्यों और अच्छा क्यों सुनाई देगा, थोड़ा और दूर बैठ के देखता है, फिर थोड़े समय बाद उसको लगता है कि अभी टेम्पल हॉल में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, सन्नाटे की घन आवाज आ रही होती है, टेम्पल हॉल के बाहर बैठ के देखता हूँ वहां बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा, सारे दरवाजे बंद होंगे। तो धीरे धीरे करते करते माइंड ये प्रूफ कर रहा होता है कि बस अगर ये नहीं किया तो इसके बिना चलने वाली नहीं गाड़ी, बस दूर दूर करते 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 जैसे ही सब से दूर हो जाता है उसको निकाल के ले जाता है। तो इस प्रकार से माइंड अपने आप को बड़ा करता है, और नेचुरली माइंड की जो चाल है वो, क्योंकि माइंड बहुत ट्रिकी है और माइंड ये जानता है कि ये जो भक्त है ये कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं, और ये ऑर्डिनरी किसी चीज से फिसलने वाले नहीं, अगर मैं इसको धन का लालच दूंगा किसी भक्त को ये फिसलेगा नहीं, इसने बहुत सुना है धन धन के पीछे भागना नहीं, करना काम नहीं, करना काम नहीं, जन पीछे भागेगा नहीं, सुंदरी पीछे भागेगा नहीं, तो मन क्या करता है दूसरे तरीके से डील करना शुरू करता है, पहले एक स्पिरिचुअल थॉट लाता है और फिर स्पिरिचुअल थॉट से पूरा डिस्टर्ब कर देता है। हमारे एक फ्रेंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, तो हम लोग साथ में एक्सरसाइज को फॉलो करते थे, तो उस एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो जब कर रहे थे और जब करते करते उनके मन में विचार आया कि जो हरिनाम मैं दे रहा हूं ये हरिनाम कितना मधुर है, अच्छा पढ़ना, हरिना मधुर है या नहीं, हरिना मधुर है। वो कह रहे दूसरा विचार आया मेरे मन में कि हरिना इतना मधुर है पर आज इतनी मधुरता क्यों फील हो रही है भाई, आज क्या खासियत है। तीसरा विचार आया, अच्छा ये इसलिए फील हो रही है कि कल मैं हरिनाम संकीर्तन पे गया था। चौथा विचार आया, हरिनाम संकीर्तन कितना अच्छा था, भक्त इतने उत्साह से नाच रहे थे। छठा विचार आया, इतनी ठंड थी फिर भी भक्त घबरा नहीं रहे थे, फिर भी नाचे जा रहे थे, कीर्तन में थे। सातवां विचार आया, पर कमाल की बात है इतनी ठंड का मौसम था पर फिर भी वहां पर कुछ माताएं थी जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आई थी। कह रहा है आठवां विचार मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो शुरू कहां से हुआ था ये? पहला विचार क्या था? हरिनाम कितना मधुर है। तो ये दरअसल ये हरिनाम की मधुरता नहीं है, ये माया की चाल है। जो माया हमें किस प्रकार से निकाल के लेके जाना है भक्तों के संग से, ये अच्छी तरीके से जानती है। पर क्योंकि कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है असुरों को मारने में, जब कृष्ण ने उसको पकड़ लिया तो कृष्ण ने एक ही स्मैश से उस असुर का वध कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मन जो नेचुरली हमें हमेशा डिस्टर्ब करता है, हर समय डिस्टर्ब करता है, हमें भी चाहिए कि ऐसी कंडीशंस में जब हमारा माइंड डिस्टर्ब करे उस समय सिर्फ हम कृष्ण की शरण कर ले, कृष्ण के नाम की शरण कर ले, कृष्ण इंस्ट्रक्शन की शरण कर ले, गुरु जो बता रहे हैं, साधु जो बता रहे हैं, उन चीजों को उनकी शरण कर ले। अगर अपने ऊपर विश्वास रहेगा तो नेचुरली कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से मन हमें फिसला के ले जाएगा। और इतने लंबे समय से क्योंकि हम अज्ञानता में रह रहे हैं तो अज्ञानता में रहने की इतनी हैबिट हो चुकी है कि उस कंडीशन में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही हम सरेंडर होने की कोशिश करेंगे माइंड हमें फोर्स करेगा कि नहीं, वो अज्ञानता जो थी वहीं पर ही खुशी थी, वही सबसे अच्छा। पर हमें ये नहीं करना, हमें ऐसे सिचुएशंस में जब माइंड हमें डिस्टर्ब करे तब हमें भगवान को पुकारना है। जैसे श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब हम चैंटिंग करें तो चैंटिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे एक बच्चा अपनी माता को पुकारता है रोते हुए। क्योंकि जब बच्चा रोता है माता के लिए तो माता समझ जाती है कि इस बच्चे को भूख लगी है, इसके पेट में दर्द है या इसको मच्छर काट रहे हैं। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति उसका पिता भी ये नहीं समझ सकता, रोने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या कारण है, पर माता समझ जाती है क्योंकि वेल विशर है, प्रेम करती है। तो कृष्ण हमें प्रेम करते हैं इसलिए हमारी किसी भी प्रकार की क्राई से, हमारे रोने से समझ आते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। और अगर हम ऐसे रोएंगे नहीं तो हम हरिनाम लेते रहेंगे बाह्य रूप से पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो हरिनाम लेकर। जैसे कभी कभी चैंटिंग करते समय एक प्रश्न घूमता है दिमाग में कि चैंटिंग को तो बताया गया है कि अग्नि के समान है ना, और अग्नि के स्पर्श में जो भी आता है क्या होता है, जल जाता है। चैंटिंग को बताया गया ये पानी के समान है, पानी के स्पर्श में जो भी आता है क्या होता है, गीला हो जाता है। तो फिर जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते समय ग्रेजुअल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? जब हम अग्नि के स्पर्श में आते हैं हमारा हाथ ग्रेजुअली नहीं चलता, टच होते चल जाता है। जब हम पानी के स्पर्श में आते हैं हमारा हाथ ग्रेजुअली गीला नहीं होता, इमिजिएटली गीला हो जाता है। तो हरि नाम के स्पर्श में आते ही ग्रेजुअल का क्या मतलब है? ग्रेजुअल का यह मतलब है कि अभी हम गीले हैं, अगर आप किसी लकड़ी को, गीली लकड़ी को अग्नि में डालेंगे क्या वो जलेगी? ग्रेजुअली जलेगी। तो अभी हम गीले हैं क्योंकि हम माया के आवरण से, इस माइंड में जो हमारे आसपास एक आवरण बनाया हुआ है उससे ढके हुए हैं। मैं ये शरीर हूं, है ना, मैं हिंदू हूं, मैं अलग अलग चीजों से माया ढका हुआ है। तो जब भी हम जब करते समय पहले इन आवरणों को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक ये आवरण खत्म नहीं होंगे, डेजिग्नेशंस खत्म नहीं होंगी, तब तक जो हम हरिनाम में ले रहे हैं, हालांकि हरिनाम बहुत हमारे लिए बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है, फिर भी उस हरिनाम से हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का छठे अध्याय का ये सोलहवां श्लोक है, यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम ये तत् आत्मनैव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कभी भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो माइंड का नेचुरल हैबिट है कि हमें डिस्टर्ब करेगा, पर हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस में जो हमारे ट्रू फ्रेंड हैं, जो हमारे असली मित्र हैं, कृष्ण, क्योंकि ऐसे असुर की जो बोल है, जैसे यहाँ पर अनुवाद में क्या बताया गया है दोबारा सुनिएगा, इसी प्रकार से इस संसार में छंद वेश धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंत तो गत्ता उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविकता शत्रुता में प्रकट हो जाती है। तो ये जो उनकी वास्तविकता शत्रुता प्रकट हो जाती है, दरअसल हम अपनी इंटेलिजेंस से पता नहीं लगा पाएंगे, हमें हाई इंटेलिजेंस चाहिए, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कौरे योगाए, श्रवण और कीर्तन ये जो मेडिसिन है, अगर इन मेडिसिन का अगर हम सहारा लेंगे तो जो हमारा डिजीज है, डिजीज की चर्चा की गई है, जैसे हमारा डिजीज है, बीमारी है हमारी भव रोग की, तो ये बीमारी खत्म हो पाएगी श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, कृष्ण को अलाउ करना है, भक्तों को अलाउ करना है, गुरु को अलाउ करना है कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें, हमारी लाइफ में आके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि उनकी सॉल्व से उनकी हेल्प के बिना ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखें कि माइंड हमें ट्रिक्स तो देता है और कृष्ण इसकी पोल भी खोलते हैं मन की बार बार, शास्त्र गुरु मन की पोल भी खोलते हैं, बताते हैं कि मन के वश में आके कार्य मत करो, मन के वश में आके कार्य मत करो, परंतु फिर भी माइंड को हमने इतना इंटीमेट फ्रेंड माना हुआ है अपना कि हम बाकी सारी चीजों पर उस पर फिर भी हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, हालांकि हमारा बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, फिर भी हम अपना पूरा ट्रस्ट हमने उस माइंड पे दिया हुआ है, फिर भी क्योंकि उसी कारण से हम इसी लाइफ में मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो साधारण महाराज के मैं एक और लेक्चर में सुन रहा था, महाराज उसमें एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है, महाराज उसमें बता रहे थे कि क्योंकि जितना ज्यादा माइंड में डिस्टर्ब करता है, माइंड की यही रहती है कि जब तक हमें हाईएस्ट नहीं मिल जाएगा, जब तक हमें सुप्रीम नहीं मिल जाएगा, सबसे ज्यादा नहीं मिल जाएगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, और उसके लिए मन हमें कुछ भी करवाने के लिए तैयार है हमारे से। तो एक महाराज बता रहे थे उसमें कि एक व्यक्ति था जो इतना धनवान व्यक्ति था कि उसके अंदर हमेशा एक फियर रहता था कि मेरे से ऊपर कोई ना निकल जाए, क्योंकि नेचुरली अगर किसी कार मैकेनिक के वहां पर तो छोटू काम कर रहा होता है तो थोड़े से उनको छोटू क्या बन जाता है, उसका एक अपना गैरेज बन जाता है। तो वो जो व्यक्ति था वो ये नहीं चाहता था, तो वो थोड़े थोड़े समय बाद क्या करता था, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उसके इंटीमेट्स थे, जो बहुत क्लोज थे, उसके आस पास रहने वाले लोग थे, जिससे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, सबसे ज्यादा काम करता था, थोड़े थोड़े समय बाद उन सबका मर्डर करवा था, और जितने भी लोग थे सब जानते थे कि अपने सबऑर्डिनेट्स का मर्डर करवा था, फिर भी लोग उसके वहां पर नौकरी करते थे। किस लिए करते थे, उनको लगता था कि इनका तो मर्डर करवा रहा है पर मेरा नहीं करवाएगा, मुझसे बहुत प्रेम करता है, जितना प्रेम ये मुझसे करता है हो सकता है उनसे इतना प्रेम ना करता हो, इसलिए उनका मर्डर करवाया, पर मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा ध्यान रखेगा। तो मन भी वैसा ही हमें लालच देता है, ठीक है एक्सपीरियंस से सीख लिया, ये कर अलग अलग प्रकार की चीजें करके देख ली, भक्तों के एक्सपीरियंस से, शास्त्रों के एक्सपीरियंस से, शास्त्रों में इतनी कथाएं हैं, उन एक्सपीरियंसेस से हमने सीख लिया कि माइंड किस प्रकार से हमें डिस्टर्ब करता है, किस प्रकार से हमें भक्ति को खत्म करता है, नाश करता है, फिर भी हम सोचते हैं कि सबका किया है पर मेरा नहीं करेगा, मेरा ध्यान रखेगा। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए इसमें कि कृष्ण हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र हैं, कृष्ण के अलावा हमारा और कोई मित्र नहीं है। देखिए अगर जो भी मित्र की डेफिनेशन की जाए तो क्या हो जाती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जो जरूरत के समय हमारे काम आए वो क्या हमारा मित्र है। तो आप सोचिए, मान लीजिए अगर भौतिक संसार में आपको अच्छा मित्र है भी, पर क्या हमेशा आपके साथ रह सकता है, मान लीजिए आपके मित्र से 200 किलोमीटर दूर है, आपको कोई समस्या आ गई तो क्या आपका मित्र आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दूर है आपसे। पर कृष्ण इतने हमारे अच्छे मित्र हैं कि परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ में चलते हैं, और जब भी हमारी जरूरत होती है, जब भी हम अपने आप को शरणागत करने के बारे में सोच भी लेते हैं, हमें गाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इवन अगर हम कीड़ा भी बन जाए, बॉम बन जाए, उस स्थिति में भी हमारे साथ कृष्ण जाते हैं और उस स्थिति में भी हमारी मदद करते हैं। तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे रामचंद्र देव, उनकी स्टोरी आती है। रामचंद्र देव की हालांकि स्टोरी बहुत बड़ी है, पर उनकी स्टोरी में ऐसा था कि रामचंद्र देव किसी ना किसी प्रकार से जो मुसलमान राजा था उसमें फोर्स करके जो रामचंद्र देव को मुसलमान बना दिया। तो हालांकि जब तक रामचंद्र देव मुसलमान नहीं थे तब तक वो जगन्नाथपुरी का मंदिर देखते थे, सभी चीजों को नियमित रूप से ध्यान रखते थे, उनके जो उनकी पत्नी उनके बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके जो मित्र थे वो ऐसे मित्र थे जो बोलते थे कि हमारी मित्रता अटूट है, कभी नहीं टूट सकती। पर क्योंकि वो मुसलमान राजा जब आक्रमण करना चाहता था हिंदुओं के ऊपर और मंदिरों को तुड़वाना चाहता था, तो रामचंद्र देव ने मुसलमान बन गए और उनको मुसलमान देखकर जो उनके मित्र थे उनको छोड़कर चले गए, जो उनके संबंधी थे उनको छोड़कर चले गए, हर व्यक्ति उनको छोड़कर चले गया, जो बाह्य रूप से सिर्फ देखने में लग रहे थे मित्र हैं, परंतु रामचंद्र देव ने कि जो असली मित्र थे जगन्नाथ वो उन्हें छोड़ के नहीं गए, क्योंकि रामचंद्र देव नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर आकर जगन्नाथ जी के चक्र को देखकर उनसे प्रार्थना करते थे। तो जगन्नाथ जी ने वहां के पंडित के सपने में आके बोला कि ये मेरा भक्त है और ये मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम क्या करो मेरी स्थापना मंदिर के बाहर करो। तो पतित पावन जगन्नाथ जी के रूप में अभी भी जगन्नाथ जी जो सिंह द्वार है वहां पर स्थापित है। तो जो कृष्ण की फ्रेंडशिप है, जो कृष्ण की मित्रता है, वो किसी भौतिक मित्रता की तरह नहीं है। अगर हम किसी भौतिक व्यक्ति से मित्रता कर भी लें तो 1+1, 1+2, 1+3 एक और एक दो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण से मित्रता करते हैं तो 1+∞, उसकी कोई लिमिट नहीं है और कृष्ण के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य बताते हैं, जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ में संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वे सरलता से उन तक पहुंच सके। हालांकि उस व्यक्ति के पास प्रामाणिक संस्था भी है, प्रामाणिक भक्त भी है, प्रामाणिक गुरु भी है, सारी फैसिलिटीज हैं, पर वो इतना बुद्धिमान नहीं है, और क्योंकि वो इतना बुद्धिमान नहीं है, भक्ति में उन्नत नहीं है, तो उसे कनिष्ठ मानकर त्याग दिया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। परंतु कृष्ण इतने मर्सीफुल हैं, कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उस व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं, कृष्ण हमेशा उसके साथ में रहते हैं। एक भजन है श्री भक्तिमोहन ठाकुर का, जीव जागो, तो एक बार इसे पढ़ के बताएंगे आखिर में, इसका जो मीनिंग है वो पढ़ के सुनाएंगे। लॉर्ड गौरांगा इज कॉलिंग, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वेक अप स्लीपिंग सोल्स, वेक अप स्लीपिंग सोल, जीव जागो, जीव जागो। How long you will sleep in the lap of the witch called Maya? कब तक माया की गोद में ऐसे पड़े रहोगे? You have forgotten the way of devotional service. आप भूल चुके हो कि भक्ति कैसे करनी चाहिए? And are lost in the world of birth and death. और ये जन्म मृत्यु का सागर है, इसमें फंस चुके हो। I have descended. मैंने अवतार लिया है, just to save you. केवल आपकी रक्षा करने के लिए। Other than myself, you have no friend in this world. मेरे अलावा आपका कोई बंधु, कोई मित्र नहीं है। I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion. मैं एक ऐसी दवाई लेके आया हूँ जो माया के इस illusion को, इस इन चालों को से निकाल सकती है हमारे को, from which you are suffering, जिनसे हम दुख भोग रहे हैं। Take this महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। श्री भक्तिवर ठाकुर कहते हैं I fall at the lotus feet, Lord's feet, having taken this महामंत्र, मैं भगवान के चरणों में गिरता हूँ इस महामंत्र को लेकर। तो चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर यहाँ पर स्वयं आए हैं भगवान, कितनी दूर से आए हैं भगवान यहाँ पर, किस लिए आए हैं? हमारे लिए, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा बंधु हूं, जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आई एम योर फ्रेंड। और मैं ये इसमें बताया डिजीजेस के बारे में बताया कि जो पाप है, डिजीजेस है, वो तो सिर्फ पापों का फल है। तो हमारे पापों का फल है कि हम इस भव सागर में हैं, इस भौतिक संसार में हैं, और इस भौतिक संसार से तब निकल पाएंगे जब हमें एक अच्छी दवाई मिलेगी। और हमारा जो मित्र है कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु हमारे मित्र हैं, ये स्वयं आए हैं और साथ में दवाई लेके आए हैं, और वो दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो हमें सिर्फ यही करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और हमेशा ये याद रखें कि जो छंद मित्र हैं, जो देखने में केवल मित्र जैसे लगते हैं, वो हमें भौतिक संसार में हर जगह मिलेंगे, हर परिस्थिति में मिलेंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा असली ट्रस्ट, असली फेथ है, वो केवल कृष्ण में हो और कृष्ण के भक्तों में हो। 9 बज चुके हैं, मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्ण, जय कृष्ण प्रभुपाद की जय।